मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी नौजवान साथियों का पूरी ताजगी और गर्मजोशी के साथ हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन दो विशेष नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इन साथियों के नाम हैं अजय प्रजापति जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और विवेक कुमार आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अजय और विवेक, आप दोनों दोस्तों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे एक मेल मिला है और इस मेल के अनुसार ही अब मैं आप सबकी तरफ से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा रोहित डिगरा को जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और अब वो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। तो रोहित, आपके सफलता के लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और साथ ही इंटरव्यू की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना और शुभकामनाएं भी। दोस्तों, अब एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना है, बशर्ते कि आप इसे महत्वपूर्ण मान सकें। लंबे समय से मेरे पास लगातार एकेडमी के पास ये मेल आ रहे थे कि सर, मॉक टेस्ट जो अभी प्री के आपके जून में एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का है उसका मॉक टेस्ट, मतलब टेस्ट पेपर आप कह लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं कहना चाहिए सर, टेस्ट पेपर अगर उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और एकेडमी इससे पहले 2 सालों तक टेस्ट पेपर उपलब्ध भी कराती रही है अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार, और नो डाउट कि उसमें आपकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता था। पिछले साल भी एग्जामिनेशन से पहले हम लोगों ने कुछ टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए थे और उससे भी पिछले साल हम लोगों ने टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए थे। तो मित्रों, उसी परंपरा को बनाए रखने के लिए और आप लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एकेडमी इस बार भी ऐसा कर रही है और उस कर क्या रही है, उसकी शुरुआत एकेडमी ने कर दी है और उसका पहला भाग कह लीजिए या उस सीरीज की पहली कड़ी ऑलरेडी afis.com पर उपलब्ध करा दी गई है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और इन 50 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और जो लेवल है वो सिविल सर्विसेज के इक्वलेंट है। बिल्कुल, बहुत कोशिश, बड़ी मेहनत और बड़ी सावधानी के साथ वो प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, सूचना यह है कि वो टेस्ट पेपर अब अवेलेबल है afis.com पर और आप सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं कि वो अगर चाहें तो इसका उपयोग करें। एक बात जो मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, वह यह कि जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आते हैं, हमने इसको 50-50 क्वेश्चन का बनाया है और वो जानबूझकर किया है क्योंकि हमारा पर्पस आप खुद को इवेल्युएट करें सिर्फ यही नहीं है, वो तो है ही कि आप खुद को इवेल्युएट कर सकेंगे इसके माध्यम से कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि आपकी तैयारी में भी हम मदद कर सकें। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ करके केवल आपको सॉल्व करके केवल ये नहीं जानना है कि आपने कितना स्कोर किया और अगर 55% स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो एक पर्पज है। लेकिन दूसरा पर्पज है कि आप इनको पढ़ करके और अपनी तैयारी के तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं यानी कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर भी ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत संभव है कि इन तथ्यों से ही प्रश्न बनाकर और आपके सिविल सर्विसेज में आ जाए। क्योंकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोशिश ये की जाए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, जो संभावनाएं हैं आप कह लीजिए, वहां से प्रश्न उठाए जाएं और फिर उन प्रश्नों को सिविल सर्विस के पैटर्न पर बनाया जाए। तो अगर आप तथ्यों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए इसका दोहरा फायदा होगा। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं और वो काम यह है कि पहले तो आप 50 क्वेश्चन एक घंटे में सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें कि आपका स्कोर कितना होता है। इसके बाद फिर आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको अपने दिमाग में रखें, इससे आपको कई गुना ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए मित्रों, इसे आप केवल इसके साथ एक घंटा गुजार कर और इनको किनारे न कर दें, बल्कि ये एक ऐसा टेस्ट पेपर है जो आपको आगे भी मदद आपकी करेगा। तो मित्रों, एक बात और भी है कि हम इस तरह के टेस्ट पेपर आप लोगों को प्री एग्जामिनेशन से पहले बीच बीच में उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके और यह मजबूती आपको सफलता के करीब पहुंचा सके। फ्रेंड्स, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर, और सबसे पहले हम आते हैं AIR न्यूज पर। मित्रों, सच पूछे तो एक ही न्यूज सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने जो, आपको मालूम है कि 7 इस्लामिक मुस्लिम देशों पर जो उनके नागरिकों के वीजा पर जो रोक लगाई थी कि वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, आपने देखा है कि उसको लेकर के पूरी दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई हैं, बहुत विरोध किया गया है। खुद अमेरिका में अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध किया है, और फिर आपको यह भी मालूम है कि किस तरह से वहां का जो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए वहां की, उसने ट्रंप जी राष्ट्रपति के इस आदेश को असंवैधानिक ठहराया। फिर ट्रंप प्रशासन ने, यानी कि राष्ट्रपति जी की तरफ से जो उसका भी जो एक अपील कोर्ट होता है, एक अपीलीय कोर्ट होता है जिसको कहते हैं, फेडरल डिस्ट्रिक्ट सिएटल में जो स्थित है, वहां उन्होंने अपील की, और बड़ी बात है कि उस अपील कोर्ट ने भी ट्रंप के आदेश को निरस्त कर दिया। इसका मतलब है कि अभी फिलहाल जो 90 दिन की रोक जो राष्ट्रपति ने लगाई थी वो अभी लागू नहीं होगी। दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको एक दो बातें केवल बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैंने आपको इशारा भी किया था कि जो अमेरिका का जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो भारतीय और ब्रिटेन न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। वहां न्यायालय सुप्रीम है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का न्यायालय भारत के न्यायालय से कमजोर है, वो संसद ज्यादा शक्तिमान है। हमारे यहां के जो कोर्ट है, जो कोर्ट क्या मतलब, इसको कह लीजिए जुडिशरी कह लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी जो जुडिशरी है वो अमेरिका जितनी शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन ब्रिटेन जितनी कमजोर भी नहीं है। कमजोर तो नहीं कहनी चाहिए, इन दोनों के बीच की जुडिशरी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, यहां मैं आपको एक छोटा सा तथ्य बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जो जुडिशरी है, जो जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के कह लीजिए, सो कॉल्ड फेडरल कोर्ट के जो जस्टिस है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना। इंटरेस्टिंग इसलिए जानना है कि देखिए, हमारे यहां जैसे ही थोड़ी सी भी राजनीति की बात होती है तो उसका विरोध होता है, और हम ये मान करके चलते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी में दखल होगा। जैसे देखिए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाए जाने का जो एक्ट था वो हमारे संसद ने पारित कर दिया, राज्यों ने भी उसे ओके कर दिया, लेकिन न्यायालय ने फिर अपने रिव्यू अधिकार का उपयोग करते हुए उसे निरस्त कर दिया कि संविधान की आत्मा के खिलाफ है, क्योंकि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बाधित होगी, क्योंकि वो जो आयोग, जो एक कॉलेजियम जो सिस्टम बनाया गया था उसमें राजनीति की दखल थी, और वो बात खत्म हो गई, राइट। अब आप देखिए कि अमेरिका में क्या स्थिति है, और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि आपके जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है उसमें दिया हुआ है कि आप, हम भारत का संविधान तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जो दूसरे देशों के जो संविधान हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कंपैरेटिव जानकारी होनी चाहिए। हालांकि सीधे सीधे उन जानकारियों के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत परेशान भी मत होइएगा कि अब आपको ब्रिटेन का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, रशिया का भी पढ़ना है और अमेरिका का भी पढ़ना है, नॉट एट ऑल। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो उसी के तहत मैं आपको ये जो अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में बता रहा, जो वहां लगभग पिछले 20 सालों से काम आ रहा है। देखिए, वहां एक कमेटी होती है और उस कमेटी में दोनों दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। दोनों दल मतलब अमेरिका में दो मेजर हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके अभी ट्रंप है और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके ओबामा जी थे। तो उनसे कमेटी बनती है, उस कमेटी के पास लिस्ट आती है, एक लिस्ट तैयार करती है कमेटी जजों की, और फिर वो जो लिस्ट में जिनके नाम होते हैं उन नामों को बकायदे ये कमेटी रिव्यू करती है, उनके बारे में विचार करती है, और विचार करने के बाद फिर जो उनको ठीक लगता है नाम वो राष्ट्रपति के पास भेज देती है, राइट। और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जब राष्ट्रपति उसमें से किसी को मंजूरी दे देते हैं तो फिर वह सीनेट के पास जाता है, सीनेट यानी कि संसद के पास जाता है, और वहां से उन नामों पर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग होने के बाद फिर जज की नियुक्ति होती है। आप सोच के देखिए, अब आप देखिए कि जो समिति है उसमें पॉलिटिशियंस हैं, इसके बाद जो राष्ट्रपति के पास चला गया वो पॉलिटिशियन है, फिर राष्ट्रपति ने जिन नामों को स्वीकृति दी वो फिर से वहां के पार्लियामेंट के पास जा रहा है, और फिर वहां जो पार्लियामेंट में जो वोट दे रहे हैं वो सबके सब आपके पॉलिटिशियंस हैं, और फिर नियुक्ति होती है। और मजेदार बात यह है कि अगर कोई एक बार फेडरल कोर्ट का जस्टिस बन जाता है तो उसके रिटायरमेंट की एज मालूम है कितनी अमेरिका में, टिल डेथ, कि जब तक वो जीवित हैं तब तक वो उस पद पर बने रह सकते हैं। तो ये वहां की जो जुडिशरी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, है ना, इंटरेस्टिंग जानकारी है। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर थी वो तमिलनाडु में जो सीएम, नए सीएम की जो संभावना बन रही चीफ मिनिस्टर की, शशिकला जी की, उनके बारे में आपने खबर पढ़ी कि वहां के जो विधायक दल हैं उन्होंने इनको अपना नेता चुन लिया है, शशिकला जी को, तो अब ऑलमोस्ट फाइनली है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद बृहस्पतिवार को वो अपने पद की शपथ भी ले लें। अब चलिए आगे देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी स्थिति हुई तो बात करने की, तो फिर उस पर उनके बारे में बातें करेंगे। मित्रों, जो मैं आज आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूं स्पेशली, वो है सच पूछिए तो शुक्रवार की एक घटना जिसके लिए मैंने शनिवार को आपको पेपर क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी उसको लेकर, और वह मेरी जो क्लिपिंग्स थी वो दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट था जो उन्होंने नागालैंड के बारे में लिखा था। मुझे अफसोस है कि इस खबर, अफसोस तो नहीं कहना चाहिए, गलत मैं बोल गया, कि इस खबर की उतनी चर्चा हिंदी अखबारों में नहीं है, अंग्रेजी के अखबारों में चर्चा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और खबर यह है कि नागालैंड में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने थे, अगर आपने वो क्लिपिंग्स पढ़ी हो तो ध्यान होगा, यानी कि पंचायत इन सब के चुनाव होने थे, तो चुनाव होने से पहले ही आपने पंचायत अधिनियम अगर आप 1993 का देखेंगे तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो स्थानीय निकाय होंगे उसमें से 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उसको लागू कर दिया गया कि 33% इस बार के चुनाव में 33% पदों पर महिलाएं आरक्षित, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसको लेकर के वहां बहुत हंगामा हुआ, और वहां के जो परंपरागत संगठन है उन्होंने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का। देखिए, वो उनकी अपनी परंपरा है, परंपरा में जो भी इसे वो ठीक नहीं समझते होंगे, लेकिन उनके पास एक संवैधानिक कथन भी है अपने पक्ष में, और उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद बकायदे 371 के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। यस, संविधान के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार है, और उस अधिकार के तहत ये बात कही गई है कि नागालैंड में जो पारंपरिक जो जातियां हैं उन पर कुछ क्षेत्र ऐसे दिए गए हैं उन पर हमारे संविधान के प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि वहां की राज्य विधानसभा उसका अनुमोदन न कर दे। उसके तहत यही है कि कोई भी ऐसा कानून जो वहां की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं पर आघात पहुंचाता हो, उनकी जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध हो, इस या उनके जो भूमि और उनकी जो संपत्ति है उनके स्रोत उसके स्वामित्व को बदलने वाले कानून हो, ऐसे कानून लागू नहीं किए जा सकते। यहां यह बात बिल्कुल संविधान के अनुकूल वो जो बात कह रहे हैं वो है। तो दोस्तों, ये समाज का द्वंद है कि हम किसे परंपरा माने और किसे संविधान का विरोध माने, किसे समानतावादी माने, किसे सिविल कोड कंडक्ट माने। आप देख रहे हैं कि जल्लीकट्टू के मामले में भी परंपराओं की ही बात हो रही है, तो ये एक राजनीति और समाज का जो द्वंद है या परंपरा और आधुनिकता का जो द्वंद है वो इसमें आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप किताब से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपसे स्पेशली जो बात कहना चाह रहा हूं वह यह कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका पेपर या सब्जेक्ट है कह लीजिए, उसके तहत आप देखेंगे कि वीकर सेक्शंस और कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। ये जो ये कह लीजिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, इस स्पेशल प्रोविजन में दो चीजें हैं। नंबर एक, कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान। तो वर्ग में क्या आ जाते हैं? नो डाउट एसटी, एससी, ओबीसी, वीकर सेक्शंस में माइनॉरिटी, ये सब के सब विशेष वर्ग में आ जाते हैं। इनके लिए प्रावधान अलग से किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ प्रावधान क्षेत्रों के लिए भी किए गए हैं, मतलब कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। और वो जो प्रावधान है वो बकायदे संविधान के तहत हैं। और अगर आप संविधान के भाग 21 को देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 झ तक 10 राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, क्योंकि उन राज्यों को यह माना गया कि ये राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, या चूंकि यहां आदिवासियों की बहुत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों, आपको मालूम क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी एक तर्क है। एक तो आपके कोर्स का हिस्सा है ही, दूसरा यह है कि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, खासकर पिछले साल का ही यानी कि 2016 का क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं हिंदी और इंग्लिश में। वो है कि क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। फिर दिया है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, व्हाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर टू एज द शेड्यूल ट्राइब्स, इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। मजेदार बात है कि उस क्वेश्चन के सामने ही दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका 4.5 नंबर का है और जो सेकेंड पार्ट है वो 8 नंबर का है, और इस तरीके से टोटल 12.5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से यहां अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में पूछा गया है। तो अब चूंकि नागालैंड में एक घटना घटी है और ये काफी गंभीर घटना है, उन्होंने कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी, चीफ मिनिस्टर के बंगले का घेराव किया, काफी गंभीर सी स्थिति वहां इसको लेकर के आ गई। तो आप अब जो कुछ वर्ग के लिए है तो उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ क्षेत्रों के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो अब एग्जाम होने हैं मेंस, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्री के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि हो सकता है कि इस पर बेस्ड करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो दोस्तों, मुझे ये आपको सूचित करना था। जहां तक पेपर आज के पेपर क्लिपिंग्स का सवाल है, दोस्तों कुछ मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, काफी क्लिपिंग्स हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन क्लिपिंग्स के बारे में आपसे चर्चा कर सकूं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने ईमेल के चरण पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब, पूजा तिवारी सूरत गुजरात, आशीष महाले महाराष्ट्र, प्रियंका कुमारी पटना, अभिषेक गुप्ता, शमशेर अली, हरिवंश जायसवार, संतोष गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश, कृति मिश्रा, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, शिपला मोहाली पंजाब, प्रमोद वालीव सांगली महाराष्ट्र से, स्नेहा कुमारी भागलपुर बिहार से, अरुण चौधरी, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, रोहित कुमार और शिवम कुमार सिंह। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।